मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 12 अगस्त 2015 है और आज के एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस afeias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मुझे ये घोषित करते हुए बहुत हर्ष होता है कि एकेडमी की जो फरवरी 2016 की जो क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए प्रतिदिन स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और उसी क्रम में मैं उन स्टूडेंट्स का भी स्वागत करता हूं ताकि स्टूडेंट्स को कंफर्म हो जाए कि हाँ उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि किस किस एरिया से स्टूडेंट्स यहां आ रहे हैं, क्योंकि इससे उनको लगता है कि उनके साथ उनका ग्रुप बन सकेगा, उनके क्षेत्र से लोग जा रहे हैं, एक समूह में फिर वो डिस्कस कर सकेंगे, तो उन्हें भी इस बात की जानकारी होती है। तो फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत कर रहा हूं आज 10 अपने उन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की फरवरी में लगने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मृदुला, आप इलाहाबाद से हैं, विकास कुमार गाजियाबाद से, आशीष शुक्ला बस्ती उत्तर प्रदेश से, राजेंद्र विष्णु बरगेजा नासिक से, कुलदीप सिंह चंडीगढ़ से, विजय कुमार चौधरी हुगली वेस्ट बंगाल से, अनिल देव कुशवाहा सतना मध्य प्रदेश से, दीपक कुमार नैनीताल से, प्रदीप कुशवाहा सतना मध्य प्रदेश से, और रोहन कुमार भोपाल से। तो मृदुला, विकास, आशीष, राजेंद्र, कुलदीप, विजय, अनिल, दीपक, प्रदीप और रोहन, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, साथ ही निश्चित रूप से मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आप यहां से निराश होकर नहीं लौटेंगे, और ये केवल मेरा ही यकीन नहीं है बल्कि जो इससे पहले के जो दो बैच ऑलरेडी एकेडमी से निकल चुके हैं उनका जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, वो जिस तरह से अपना इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं और साथ ही अपने सक्सेस के बारे में भी वो लिख रहे हैं, सक्सेस की घोषणा तो मैं इस ऑडियो में जनरली कर भी देता हूं, तो उससे भी ये यकीन हो रहा है कि एकेडमी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रही है, पढ़ने के जिस मॉडल को लेकर के चल रही है, वो सब आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेहद उपयोगी होंगे। और मित्रों, इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मेरे पास आज 3 मेल आए हैं, जिसमें एक मेल है अभिषेक का जो अभी फरवरी की क्लास में आने वाले हैं, फोर्थ बैच में आप कह लीजिए। एक मनोहर दत्त मिश्र का पटना से मेल है जो सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, और नीतीश कुमार का जो बेगूसराय से हैं उनका मेल है, वे भी सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने लिखा है, लगभग तीनों ने एक ही बात लिखी है कि अभी सौरव भगत वहां पटना में आए थे और ऋतुराज भी आए थे जिनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 69th थी। ये दोनों स्टूडेंट बिहार के रहने वाले हैं, वो पटना आए थे और वहां इनकी जो इनका जो सेमिनार था वो इन स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, और कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे पर्सनली भी बात की, जिसमें अभिषेक ने लिखा है कि वो पर्सनली उन्होंने बात भी की, और उनके वर्ड हैं अभिषेक के और दूसरों के भी लगभग वही शब्द हैं, मैं दोहरा देता हूं कि दे टॉक्ड एग्जैक्टली दैट यू टॉक एवरी डे इन डेली ऑडियो गाइडेंस। और मनोहर दत्त मिश्र और नीतीश कुमार ने लिखा है कि सर, 15 दिन की क्लासेस में जो आप बातें बताते हैं बिल्कुल वही बातें हमें वहां भी सुनने को मिली, और ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि सच पूछिए एक अंदाजे बयां ही सब कुछ बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जो सिविल सर्विस परीक्षा में जो सफलता के सिद्धांत हैं, जो मंत्र हैं, जो रहस्य हैं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो सच में वो लगभग एक जैसे ही हैं। आप कह सकते हैं कि सर, जब एक जैसे ही हैं और लोग जानते हैं तो फिर सफल क्यों नहीं हो पाते। सामान्यतः ये दिमाग में आना भी चाहिए, ये बात दिमाग में आनी चाहिए, और इसका बहुत सामान्य सा उत्तर है। उत्तर यह है फ्रेंड्स कि जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जानने के बाद आप उसको किस सीमा तक इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं खूब सारी सब्जियां तो खरीद करके ले आऊं, जितने भी दुकान में मिल रही हैं, आलू, प्याज, गोभी, टमाटर, जितने भी चीजें ले आऊं, और यदि मुझे सब्जी बनानी नहीं आती है तो मैं ला करके भी क्या करूंगा। सिविल सर्विस में लगभग लगभग आपको इसी थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास नॉलेज, हम खूब पढ़ रहे हैं, खूब इंफॉर्मेशन है, लेकिन यदि हम उस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सिविल सर्विस क्वालिफाई करना दोस्तों मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश, मनोहर और अभिषेक, आप तीनों को कि आप लोगों ने वहां अटेंड किया और एकेडमी से जो आप सीख कर गए थे उस पर आप लोगों का भरोसा और अधिक बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में आपने एकेडमी को भी इन्फॉर्म किया ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को हम बता सकें। और सीधे सीधे मनोहर ने ये लिखा भी है कि मैं ये इसलिए मेल लिख रहा हूं ताकि आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये बात बता सकें और दूसरे स्टूडेंट्स के मन में भी ये भरोसा आ सके। तो एकेडमी के प्रति आप लोगों की ये जो भावना है इसका मैं पूरा सम्मान करता हूं। मैं आप लोगों इस भावना से अभिभूत भूत हूं और इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, एक बात का और धन्यवाद और आभार, और वो ये है कि आज मेरे पास बहुत से मेल हैं, बहुत से एसएमएस भी आ रहे हैं और वो बर्थडे पर वो एसएमएस हैं, वो मेल हैं। आप लोगों को पता नहीं कैसे जानकारी हो गई है इस डेट की। चलिए, मेरे लिए तो खुशी की बात है, आप सबकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। आप वैसे भी आप लोग मेरे इस बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस काम की सराहना करते हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं जो इस काम की सराहना करते हुए ईश्वर से स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो मैं आप सबके प्रति, जिन्होंने मेल भेजे हैं उनके प्रति भी और जिन्होंने नहीं भेजे हैं, जरूरी बिल्कुल नहीं है, मैं उनके मन की भावनाओं को समझता हूं, उन सब के प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको भी शक्ति दें, उनको भी रचनात्मकता की क्षमता दें और इस उदार भाव को और अधिक उनके अंदर से बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले स्टेज पर आते हैं जिसके बारे में हम लोग कल बातें कर रहे थे मोटिवेशन वाले पार्ट में। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, मेरे पास एक मेल भी आया है कि शुरू में जब मैंने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, है ना, कि लेना आप वही होते हैं जो आप लेते हैं या ले पाते हैं, उस समय मैंने आप लोगों को एक ऐसे लिखने के लिए कहा था कि आप अपने को हल्का करें, इस पर आप लोग ऐसे लिखें। और मुझे विश्वास है कि कुछ स्टूडेंट ने लिखा भी होगा, मेरे पास मेल भी आ रहे हैं कि कुछ ने लिखा भी है, और मैंने कहा था कि इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, फिर आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं इसे भूला बिल्कुल नहीं हूं। एक टॉपिक हमने शुरू किया है, मुझे नहीं लग रहा था कि हम इसे इतने विस्तार से इसमें जाएंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे इस पर बातें होने लगी, आप लोगों के रिस्पांस भी आने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, इसे थोड़ा और विस्तार में आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए ये लगातार थोड़ा सा खींचता चला जा रहा है, लेकिन जो मैंने वायदा किया है वो मेरे दिमाग में है और वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को उस विषय पर भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो, और जिन्होंने ऐसे नहीं लिखा है बेहतर है कि उनके लिए फिर एक मौका है कि इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं वो ऐसे लिख लें। दोस्तों, अब मैं किताब पढ़ने और लेक्चर सुनने पर आता हूं कि आप किताब पढ़ते हैं और आप लेक्चर सुनते हैं, सपोज मेरा ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं। दोस्तों, ये क्या है, जैसे अगर मैं इसी बात से शुरुआत करूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि पटना में जो फिफ्थ रैंक के स्टूडेंट हैं अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है और सिक्स नाइन्थ रैंक के जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनकी सेमिनार रखी गई उनका, और उसमें स्टूडेंट्स सुनने गए। मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि ऐसा स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन उसने 5-7 साल तक तैयारी की है, उसका अगर सेमिनार रखा जाए तो क्या आप जाएंगे, या उसका सेमिनार क्यों नहीं रखा जाता, केवल इस पर विचार कीजिए। और आपको फिलॉसफी या साइकोलॉजी के बहुत गहराई में छुपे हुए रहस्य मिल जाएंगे। रहस्य तो मैं नहीं कहता हूं लेकिन इस शब्द चल गया है, आपको वो तथ्य मिल जाएंगे। 7 साल तक किसी ने तैयारी की और वास्तव में इज ए ब्रिलियंट, वो ब्रिलियंट भी है, थ्रो टॉपर स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन आप सुनने नहीं जाएंगे। लेकिन अभी स्टूडेंट जो कम उम्र के हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उनको आप सुनने जा रहे हैं, या जिनका पिछली बार सिलेक्शन हो गया है उनका अगर रखा जाए तब भी आप सुनने जाएंगे। ऐसा क्यों मित्रों? क्योंकि उनके प्रति आपका विश्वास गहरा है, आप यकीन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति जो बात बताएगा वो हमारे लिए उपयोगी होगा। और ये आप कैसे कह सकते हैं कि उपयोगी होगा? इसलिए क्योंकि उसने प्रूफ किया है, उसने अपनी सफलता से ये प्रूफ किया है कि मैं इस रास्ते को जानता हूं, मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा हूं, वो रास्ता जिस पर मैं चला था और अंततः मैंने अपनी मंजिल पा ली, तो मैं उस रास्ते को जानता हूं, वहां के एड्रेस को जानता हूं और मैं आपको वहां का पता बता रहा हूं। लेकिन जो बहुत ब्रिलियंट रहा है, 6-7 साल से जिसके पास तैयारी करने का अनुभव रहा है, जो थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर पाया, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यह आएगा कि जो खुद उस रास्ते अपने रास्ते से चलकर और मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, हो सकता है कि वो हमें उतना सटीक उतना सही रास्ता न बता सके। राइट, बस यही बात लेक्चर सुनने में और किताब पर लागू होती है। दोस्तों, जब आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो मैंने सामान्यतया देखा है कि किताब पढ़ने वाला स्टूडेंट उस किताब के राइटर के बारे में कुछ नहीं जानता, पढ़ता ही नहीं, उसको स्टूडेंट को उस राइटर की कोई बैकग्राउंड मालूम नहीं होती है और वो सीधे किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं। टीचर से पूछ लेते हैं या किसी से भी पूछ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट पर कौन से राइटर की किताब पढ़नी चाहिए, वो राइटर का नाम बता देता है और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि मैं हिस्ट्री पर आपको कहता हूं कि आप आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब पढ़ लीजिए या आप रोमिला थापर की किताब पढ़ लीजिए, तो आप लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। आप ये नहीं पता करना चाहते कि भाई ये रोमिला थापर हैं कौन, ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं कौन। तो आपने किताब को महत्व दे दिया, किताब के लिखने वाले को महत्व नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि उस किताब के प्रति जो आपका विश्वास होना चाहिए था उसे आपने मिस कर दिया। जैसे मैंने अभी कहा ना, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जब घोषित किया गया कि इसकी 5th रैंक है तो वहां भीड़ हो गई, लेकिन उसी स्टूडेंट को वहां बुलाया जाता और यह नहीं बताया जाता कि इनकी 5th रैंक है, तो आप देख लेते थोड़े से स्टूडेंट पहुंचते और शायद पहुंच करके भी वो उतनी गंभीरता से उनकी बातों को नहीं सुनते जितनी कि अब वो सुन रहे हैं। तो मित्रों, किताब के पीछे भी तो कोई व्यक्ति ही छुपा हुआ है। या आप एक मिनट के लिए सोच लें कि क्लास में बहुत भीड़ हो गई है और वहां आपको सुनने के लिए देख कर सुनने के लिए जगह नहीं है और बाहर एक साउंड सिस्टम लगा दिया गया है कि जो स्टूडेंट अंदर नहीं आ पा रहे हैं वो बाहर सुने, तो अब आपको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, आप सुन रहे हैं तो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, सुन रहे हैं। किताब में आप न तो चेहरा देख रहे हैं लिखने वाले का और न उसकी आवाज सुन रहे हैं, उसके हाथ से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ रहे हैं जो मैकेनाइज्ड फॉर्म में आपके पास आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये जान लें कि इसे लिखने वाला कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है, पढ़ाने का लिखने का कितना एक्सपीरियंस इनके पास है, कौन कौन से अचीवमेंट के अंतर्गत इनको अवार्ड सम्मान और दूसरी दूसरी चीजें मिली हैं, कहां कहां ये विजिट करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये जो किताब लिखने वाला व्यक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप सब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं जनरल स्टडीज के अंतर्गत। आपने कभी एनसीईआरटी किताब जब आप उलटते ही हैं तो कभी आपने देखने की कोशिश की है कि इस एनसीईआरटी की किताब को जो बनाने वाली कमेटी है, कितने लोगों ने इस पर काम किया है, वो कितनी बड़ी कमेटी है और उनके नाम देखे, उनमें से बहुतों के नाम तो आपको मालूम होंगे जो एकेडमिक फील्ड में बड़े माहिर हैं अपने अपने क्षेत्रों के। इतने लोगों के समूह ने मिलकर एनसीईआरटी की किताबें बनाई हैं। तो जब आप एनसीईआरटी को किताब को पढ़ते हैं तब तो ठीक है, पढ़ते जाइए, लेकिन जब आप इसको देख लेते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, ये जो मैं गन्ने का रस जो पी रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसके पीछे कितनी मेहनत छिपी हुई है। और जब आपको उस मेहनत का पर भरोसा होता है तो वो मेहनत आपके अंदर जो आप गन्ने का रस पी रहे हैं उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके मिठास को बढ़ा देता है, उसकी जो तासीर होगी, उसका जो प्रभाव होगा गन्ने का, उसको गन्ने के रस का, उसको वो बढ़ा देगी। दोस्तों, जिंदगी ऐसे ही काम करती है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि जिंदगी में आप भले ही 2 पल किसी के साथ गुजार रहे हों, लेकिन पूरे विश्वास और कंप्लीटनेस में गुजारिए। आप भले ही आधा घंटा पढ़ रहे हैं या आप किचन में खाना ही बना रहे हैं या आप किसी के साथ बातचीत ही कर रहे हैं, तो पूरी तरह से डूबकर, कंप्लीटनेस का मेरे कहने का मतलब यही है कि उसमें पूरी तरह से डूबकर, उसमें पूरी तरह से खोकर, सोच समझकर अपने उस समय को बिताइए। आप देखेंगे कि आपके उस टाइम की जो वैल्यू है, जो गुणवत्ता है, वो कितनी अधिक बढ़ जाएगी। तो मित्रों, आज के इस मोटिवेशन वाले पार्ट में बस अब मैं इतना ही आज डिस्कस करना चाहूंगा। कल देखते हैं, या तो हम इसे कुछ, मेरे और कोई थॉट आ गया तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर कल मैं आप स्वयं को हल्का कैसे करेंगे इस टॉपिक पर आपसे चर्चा शुरू करूंगा। दोस्तों, अब मैं आता हूं कल के AIR न्यूज पर, और कल के AIR न्यूज में ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम लोग न्यूज के रूप में चर्चा कर सकते हैं। मित्रों, एक खबर तो GST को लेकर के ही थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के थी, और आप देख रहे हैं कि ये खबर कहीं ना कहीं वो जो संसद बाधित हो रही है उसी से जुड़ी हुई खबर है। दोस्तों, अगर आपको ऑडियो गाइडेंस के वर्ड्स याद हो, और फिर पेपर तो आप पढ़ते ही हैं, तो आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले ही, हार्डली एक महीना हुआ होगा, जब वर्ल्ड बैंक ने भारत में जो रेटिंग है खासकर उद्योग लगाने की, उसको बहुत हाई तरीके से लिया था, और साथ ही कहा था कि यहां की जो ग्रोथ रेट है वो काफी, विकास दर काफी तेजी से बढ़ेगी। कुछ दिनों के बाद अब वर्ल्ड बैंक की फिर से रेटिंग आनी है। वो समय समय पर, जैसे हमारे यहां रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लाते रहते हैं 2 महीने में, तो वो भी अपनी रेटिंग समय समय पर देते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक की अभी रेटिंग फिर से आने वाली है। अब भारत इस बात को लेकर के चिंतित है कि अब वो रेटिंग क्या होगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने आर्थिक विकास की बात को सबसे ज्यादा जोर दिया था, और खासकर जो यंग जनरेशन है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ी थी, वो एम्प्लॉयमेंट और देश की आर्थिक विकास और सबका साथ सबका विकास, इन नारों को लेकर के उनके साथ जुड़ा था। तो स्वाभाविक रूप से है कि एम्प्लॉयमेंट तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारे आर्थिक विकास की दर न बढ़े, और आर्थिक विकास की दर तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमारे पास इंडस्ट्री न लगे, या कह लीजिए कि आयात निर्यात न बढ़े, लोगों की आय न बढ़े। ये एक चक्र होता है जो एक राउंड सर्किल में घूमता है, साइकिल में घूमता है ना। अब सवाल यह है कि जो इंडस्ट्री अगर लगने हैं, जिसे हम मेक इन इंडिया का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसके लिए हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए भारत को अपने कुछ लॉ में परिवर्तन करने होंगे, जिसमें तीन हम सबसे बड़े लॉ मानते हैं। उसमें एक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, आप जानते हैं, दूसरा है लैंड एक्विजिशन एक्ट, और तीसरा है लेबर रिफॉर्म। इसके बाद चौथा एक और लिया जाता है दोस्तों, हमारे टैक्सेशन के सिस्टम को लेकर के है, जो पिछले डेढ़ से जो टैक्सेस जो लगाए गए हैं कुछ कंपनीज पर, उसको भी लेकर के एक विदेशियों के मन में थोड़ा सा हिच है, चलिए वो एक अलग बात है। ये जो तीन जो बिल हैं, ये पार्लियामेंट में अभी अटके हुए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट काम ही नहीं कर पा रही है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस तो लोकसभा से पारित हो गई है, वो राज्यसभा में है, वो कांग्रेस विरोध कर रही है, उसके विरोध करने के अपने कारण है जिसकी वजह से वो पारित नहीं हो पा रहा है। और लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं, इसीलिए मैं उस पर आना नहीं चाहता। तो मित्रों, ये तो जब रिजॉल्व होगा, सिस्टम रिजॉल्व होगा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी संदर्भ को रखते हुए। पिछले कल के लेक्चर में मैं जो संसद जो में जो गतिविरोध है उसको एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट को कैसे लेना चाहिए उस रूप में। मित्रों, आप देखेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके दो अलग अलग पार्ट हैं, वो किसको महत्व देते हैं। हर राजनीतिक पार्टी का एक उद्देश्य होता है सत्ता अपने हाथ में लेना, और इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, याद रखिएगा। अगर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आसीन होना चाहती हैं, तो इसको गलत मत लीजिएगा कि ये लालची है, ये तो स्वार्थी है, नॉट एट ऑल। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को तभी इंप्लीमेंट कर पाएगी जब उसके पास पावर्स हो, जब वो सत्ता में आएगी, और यदि जनता उनके आइडियोलॉजी को पसंद नहीं कर रही है तो सत्ता की बागडोर सौंपेगी ही नहीं। तो इसलिए राजनीतिक पार्टी का तो उद्देश्य ही होगा कि वो सत्ता हासिल करें, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ये एक पार्ट हो गया, राइट। उसका जो दूसरा पार्ट होता है, वो दूसरा पार्ट होता है नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्रीय हित क्या है। देखिए, जब सत्ता प्राप्ति की बात आती है तब वो पॉलिटिकल पार्टी का एक छोटा सा ग्रुप है जो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की बात हो सकती है। लेकिन जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तब वहां फिर इस तरह के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनकी जो भूमिका है वो कम हो जाती है, उनकी फिर उतनी अहमियत नहीं रह जाती जहां राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय हित के मामले आते हैं। इसलिए देखेंगे मित्रों, जब पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बात होती है या जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो लगभग लगभग भारत एक सुर में उन सबका विरोध करता है, क्योंकि वहां वो हमें राष्ट्रीय हित दिखाई देता है। वहां फिर पॉलिटिकल डिविजन्स खत्म हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत इंप्लीमेंट करने के जो तरीके हो सकते हैं या क्या क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, उसको लेकर के थोड़े से मतभेद होते हैं, लेकिन हम एक सुर में पूरा का पूरा देश मिलकर उनका विरोध करता है। और आपको मालूम है कि अभी एक जो मीटिंग राष्ट्रमंडल देशों की के कुछ मंत्रियों की होनी थी, वो खासकर विधानमंडल के अध्यक्षों की, उसमें भारत को अब नहीं बुलाया गया है। तो किस तरह से हमारे देश के जितने भी विधानमंडल के अध्यक्ष थे, विधान परिषद के अध्यक्ष थे, वो सुमित्रा महाजन जी से मिले और उन्होंने विरोध किया कि ये गलत है कि अमेरिका ने जो स्टेप उठाया है और भारत ने भी उसका विरोध किया। तो इस तरह से जब ऐसी स्थिति आती है तो पूरी राजनीतिक पार्टियां अपने पॉलिटिकल लाइन्स से ऊपर उठ करके काम करती हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अब मित्रों, जो संसद है, अब इसको आप इससे ऐड कीजिए, इसे जोड़ करके देखिए कि संसद का काम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो बहस करना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब राष्ट्रीय मामलों पर इकट्ठे हों और हो करके वो बहस करें, ये उनका मेन काम है और वो करें। लेकिन अभी जो संसद हो रही है वो बहस नहीं कर रही है, वो बाइकॉट किया जा रहा है। मतलब आप उस संसद का बाइकॉट कर रहे हैं जिस संसद का निर्माण जनता ने किया है, मतलब आप एक इंस्टीट्यूशन को किनारे कर रहे हैं। अब आप देखिए कि संसद में काम हो ना हो, कैसे हो, इसको बताने के लिए पूरे के पूरे हमारे संविधान में डिटेल में प्रोसीजर दिया हुआ है। कार्य स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ढेर सारे इस तरह के प्रस्तावों की पूरी लिस्ट है कि यदि आपको सरकार के प्रति कोई अविश्वास हो रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आइए, सरकार को क्रिटिसाइज करना है तो निंदा प्रस्ताव ले आइए, यदि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर तुरंत बात ही करना है तो स्थगन प्रस्ताव ले आइए। ढेर सारे प्रस्ताव का प्रोविजन है, लेकिन बाइकआउट करने का प्रस्ताव वहां आपको नहीं मिलेगा। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस बात को जानते थे कि जब बहस होगी पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसी स्थितियां आएंगी, और ये उनका फ्रीडम है, विपक्ष का फ्रीडम है, और यही तो डेमोक्रेसी की ताकत भी है कि वो विरोध करे। वो ऐसा नहीं कि सरकार, चूंकि सरकार तो बहुमत की होती है तो ऐसा नहीं कि बहुमत ही अपने आप में एक तरीके से एक अधिकार कर ले, उसकी मोनोपोली हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारे के सारे प्रस्ताव दिए हुए, लेकिन बहिष्कार करके संसद को रोक दिया जाए और संसद में काम ही न हो, इसके लिए कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। मित्रों, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि कुलदीप नैयर जी, जो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और लंदन में हमारे हाई कमिश्नर भी रहे हैं, वो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि जब वो राज्यसभा के सदस्य थे तो जब राज्यसभा में कोई काम नहीं होता था तो उन्होंने एक प्रस्ताव कुछ इस तरह का रखा कि भाई नो वर्क नो सैलरी, अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमको वेतन भी नहीं मिलना चाहिए। तो इसको उन्होंने परसू किया आगे चल करके, तो फिर उनका मामला लॉ में भेजा गया तो उनको स्वीकृति दे दी गई कि ठीक है, आप जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन का आपको वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसको फिर सभी पार्टीज पर लागू करने की कोशिश की गई तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको नहीं माना गया। तो वो जिस दिन काम नहीं करते थे, किसी वजह से राज्यसभा की बैठक नहीं हो पाती थी, तो कुलदीप नैयर जी का उस दिन का वेतन कट जाता था। अब इसको थोड़ा सा सोच करके देखिए, बहुत एक नई चीज उदाहरण सहित उन्होंने दिया है, भाई नो वर्क नो पेन नो मनी नो, उसको करने में क्या हर्ज है, नो सवाल ही नहीं। अब आप देखिए कि जो डेली वेजर है मनरेगा में, वो जिस दिन काम करेंगे उस दिन का उनको पैसा मिलेगा। ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनकी अगर अप्रूव्ड छुट्टी है, अगर उससे ज्यादा छुट्टी होगी, अगर वो लेते हैं तो उनको LWP माना जाता है, लिव विदाउट पे, उसका नाम ही LWP, लिव विदाउट पे। तो अगर संसद बायकॉट किया जा रहा है, संसद किसी भी वजह से एडजॉर्न हो रही है, काम ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। और कुलदीप नैयर जी ने लिखा है कि अगर ये हो जाता है तो फिर ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनके इस तरह के जो रवैये हैं इस पर काफी कुछ प्रतिबंध लग सकता है। तो मित्रों, अब मैं इस टॉपिक को इसके आधार पर समअप करूंगा कि फिर से मैं रिपीट करते हुए कि आपको इसे पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना है, इसको आपको डेमोक्रेसी की क्या रिक्वायरमेंट है इसके एंगल से देखना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रोविजन्स हैं इस तरीके से इसको देखना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा का पूरा सेशन लगभग लगभग बायकॉट का शिकार हो गया है। एक दो दिन बायकॉट होते रहते थे और फिर सेशन रिज्यूम हो जाता था, काम करना शुरू कर देता था। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सिविल सर्विस के लिए इमर्ज हो रहा है। मित्रों, जो दूसरी एक बड़ी खबर थी वो थी आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड को लेकर के आप देखेंगे कि पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2013 में भी पूछा गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, अभी डिसीजन नहीं दिया है, स्पष्ट किया है उसने। चार पॉइंट उन्होंने बताए हैं। पहला तो यह है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं होगा, यानी कि जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं उनको भी सरकारी योजनाओं के लाभ मिलेंगे। उसमें दो तीन योजनाएं उन्होंने बताई हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें किसी को फायदा लेना है। एलपीजी जो गैस होती है, जो रसोई गैस होती है, उसकी सब्सिडी लेनी है। या मिट्टी का तेल जो जिसको हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं, केरोसिन ऑयल, उसमें अगर उसको लेना है तो उसमें आधार कार्ड का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक है, वो आधार कार्ड का इस्तेमाल करेगा। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि भारत सरकार मीडिया में इस बात का प्रचार करेगी कि आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा है दोस्तों कि आधार कार्ड में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसकी ढेर सारी डिटेल्स पूछी जाती हैं, वो एक तरह से गुप्त रहना चाहिए। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल सरकार केवल आपराधिक मामलों की जांच के लिए करेगी, अदरवाइज वो उसको गुप्त रखेगी। और सच पूछे तो जो आधार, ये चार पॉइंट थे फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होने चाहिए, चारों पॉइंट बहुत मालूम होने चाहिए आपको। इस पर आप देखेंगे कि एडिटोरियल कमेंट भी शायद आए, एक दो आर्टिकल भी मुझे लगता है कि आगे चल करके जरूर आएंगे। इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी है वो खासकर सच पूछे तो निजता कानून को लेकर के ही बनी है कि मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, आधार कार्ड बनवाते समय मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो मेरी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी का जो पूरा का पूरा जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास है। अब इस डेटा का गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो वो एक लगातार एक विवाद के केंद्र में ये बात रही है। तो आप देखते हैं, चूंकि निजता कानून को स्पष्ट करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच तैयार होनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि निजता का कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया में फिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, इसको लेकर के अभी बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो इस स्थिति को क्लियर कर दे, तो अब देखते हैं कि वो क्या होता है। और आधार कार्ड भी कहीं ना कहीं वो निजता कानून से जुड़ा हुआ है। मित्रों, दो तीन छोटी छोटी खबरें और हैं जो मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने की बात नहीं है। एक तो बहुत बड़ी खबर, इसको आप कह सकते हैं, देखते हैं कि आगे किस रूप में हमारे सामने आती है, वो कि चीन की जो अपनी मुद्रा है युआन, उसका अवमूल्यन किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, कई सालों के बाद, शायद 3-4 साल के बाद इतना बड़ा अवमूल्यन किया है, शायद 1.5% या 2% के आसपास अवमूल्यन किया है। ये खलबली मचाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि चीनी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ तो मामला है। अब देखते हैं कि ये किस रूप में आता है। तो इसको जो इकोनॉमिस्ट हैं एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, न्यूज में आपने एक और भी बात, एक और खबर सुनी है कि जो गूगल है उसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो सुंदर पिचई बनाए गए हैं, जो भारतीय मूल के क्या है, मतलब वो भारत के ही हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं, बहुत ही सामान्य परिवार के रहे हैं। और हालांकि उनके फादर इंजीनियर थे, लेकिन उनके मदर टीचर थी कहीं, यानी क्लर्क थी शायद, उनकी मदर क्लर्क थी। दो कमरों के छोटे छोटे मकान में वो रहते थे, एक लम्ब्रेटा स्कूटर था, मतलब बहुत ही एक मिडिल क्लास जो होती है, एक लोअर मिडिल क्लास, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर खड़गपुर से उन्होंने इंजीनियरिंग की और फिर फॉरेन से उन्होंने जो भी डिग्री हासिल की, और अब वो गूगल के सीईओ बनाए गए हैं। और न्यूज में आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। मित्रों, इससे पहले हम लोग जब जिस युग में रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसकी कल मैं बात कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री किसी कंपनी के सीईओ को बधाई नहीं देते, लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है, ओपन मार्केट हो चुका है और 43 ईयर्स के एज के स्टूडेंट का, यंग स्टूडेंट ही मैं कहूंगा, यंग पर्सन का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल का अगर सीईओ बनता है वो, तो ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होती है और स्वाभाविक रूप से ऐसे में बधाई दी ही जानी चाहिए। तो हम सब की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई, और आप सब, हम सब में आप भी शामिल है। तो ये भारत कि एक जो ताकत है, जो मैनेजमेंट पावर है, जो इनोवेशन की कैपेबिलिटी है, चीजों को आगे ले जाने की क्षमता है, कहीं ना कहीं ये उसको भी स्पष्ट करता है। और न्यूज में आपने सुना है कि करीब ये 2-1 साल पहले की बात है या 1 साल पहले की बात है, जो माइक्रोसॉफ्ट दूसरी से एक अपने आप में बिल गेट्स की जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसके जो सीईओ बनाए गए थे वो भी भारत के हैं, सत्या नडेला। तो किस तरीके से भारत की जो यंग जनरेशन है वो कितना बड़ा काम कर रही है, और मुझे खुशी है कि मैं अपने ऑडियो के माध्यम से उसी यंग जनरेशन तक लगातार पहुंच रहा हूं और अपनी कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, अंत में एक छोटी सी जो खबर थी वो ये थी कि अभी 16 तारीख से हमारे प्रधानमंत्री जी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। अभी तक प्रधानमंत्री का शायद 30-35 साल के बीच में कोई प्रधानमंत्री वहां की यात्रा पर नहीं गए हैं। चलिए अब यात्रा की जब शुरुआत हो जाएगी क्या बातें होती उस समय हम बात करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारी यात्रा पर जाने वाले हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। आज काफी कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स डाली गई हैं, उसमें नागालैंड पर भी कुछ खबरें हैं, क्लिपिंग्स हैं, आर्टिकल्स। नागालैंड का मैंने अभी इसलिए डाला है कि उससे आपको थोड़ी सी नागालैंड के बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाएगी कि वहां जो अशांति की स्थिति है वो क्यों है। चूंकि हमारे पास अभी जो एकॉर्ड हुआ है, जो समझौता हुआ है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, इसीलिए अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं है। तो मित्रों, उसको आप न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। अखंड प्रताप सिंह का मेल है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब क्लास यहां लग रही थी तो कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, उसके बारे में मैंने कहा था कि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अखंड, वो मेरे दिमाग में है, मेरी लिस्ट में भी है, लेकिन बहुत जल्दी मैं पारिभाषिक शब्दावलियों का जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस होगा वो तैयार करके आपको प्रोवाइड करूंगा। आप सबको जो कहा गया है उसे 100% किया जाएगा, लेकिन अभी तो जो कुछ दूसरे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे थे इसीलिए ये पिछड़ता जा रहा था, लेकिन मेरी लिस्ट में ये है। आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं भूला नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि हमारे स्टूडेंट इतने अलर्ट हैं और समय समय पर बिल्कुल आप लोग मुझे याद दिलाने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं, उसे जरा भी आप अन्यथा न लेंगे। मित्रों, इसके बाद तनु प्रिया सिंह का न्यू दिल्ली से मेल है। तनु, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अनुभव को हमारे ऑडियंस तक शेयर करने की अनुमति दे दी है, लेकिन मैं अभी उससे शेयर नहीं कर रहा हूं, वो का पेज मैंने रख लिया है। समय मिलने पर मैं डेफिनेटली उस अनुभव को, आपके जो इतना पवित्र और बहुत ही अच्छा अनुभव है, उसको मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद मित्रों, केशव नंदन का है बेगूसराय से। केशव नंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाया है afis.com में। बहुत से फ्रेंड्स मिलकर के उस afis.com को सुनते हैं और उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपके इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूजा चतुर्वेदी, आपने MPPSC मेंस के बारे में पूछा है, क्योंकि उसी समय आप क्लास में आ रहे हैं, अक्टूबर की क्लास में, और उसी समय मेंस का एग्जाम है। आप बिल्कुल द्वंद में मत रहिए, है ना, आप डिसीजन लीजिए, और डेफिनेटली चूंकि मेंस एग्जाम है, आपने प्री क्वालिफाई किया है, आप क्लास में बाद में भी आ सकती हैं, लेकिन मेंस एक बार आप दे लेंगी तो आपका एक चांस मिस हो जाएगा और फिर आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए चूंकि आपने मुझसे सलाह मांगी है तो आपको जो मेंस एग्जाम है आपको इसे अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ ही कुछ और मित्रों के मैं नाम ले रहा हूं और जिनके नहीं भी ले रहा हूं उन सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इनमें कुछ दोस्त हैं शुभांकर मंडल कोलकाता से, पवन जो है वो है घाट शिला से, मन्यू राय का मैंने भी नाम लिया है, अमित कुकरेजा रायपुर से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।